नमस्कार। ब्रह्म कुमारी इसके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन परिसर से हम आपके साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ये है हमारी लाइव प्रस्तुति 21 दिवसीय योगा चैलेंज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। नाम है इसका संपूर्ण योग। ब्रह्म कुमारी इसकी छोटी सी पहल रही है कि योग को उसके संपूर्ण स्वरूप में लोग समझें। पतंजलि ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में यह बताया है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग के बहुत सारे बेनिफिट्स में सबसे पहले चित्त की वृत्ति, मन के भटकने को बंद करने के लिए योग के अभ्यास के बारे में बताया है। पतंजलि अष्टांग मार्ग के इस योग पर योग के 8 limbs के बारे में जब बात करते हैं तो वो सिर्फ योगासनों की बात नहीं करते, सिर्फ प्राणायाम की नहीं बात करते। ऐसे में योग के संपूर्ण स्वरूप को, उसके 8 limbs को समझकर उस पर काम करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस छोटे से प्रयास में हम 21 दिनों से, यानी पिछले गत 19 दिनों में योग के अलग अलग आयाम सीखे हैं। फिजिकल योगासना तो सीखे हैं, मगर योग से मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स और इसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को भी समझने के प्रयास किए हैं। और आज जैसे आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय के शांतिवन परिसर में हम तपस्या धाम के सामने से बैठकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रयास यही है कि हम प्रकृति के साथ जितना सामंजस्य में रहेंगे, प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे, वहां पर हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं और योग यही चीज हमें बताता भी है। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे हर दिन हमने किया है, कार्यक्रम के शुरुआती 10 मिनट हम योगासन और प्राणायाम पर ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद आज के विषय पर हम बोध हासिल करेंगे और इस बोध पर हम आपके प्रश्नोत्तर के एक छोटे से सेगमेंट में आपके कुछ प्रश्न लेंगे। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी के अभी ही अपने सवाल टाइप इन कर दीजिए और आज के हमारे एक्सपर्ट से हम उसका उत्तर भी लेंगे। और कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम करेंगे राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन। तो पूरे कार्यक्रम को 45 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करने का हमारा प्रयास रहता है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारे योगाचार्य हरीश वैद्य जी के पास, जो आज कराएंगे हमें योगासन और प्राणायाम।
ओम शांति, वंदे मातरम। आपके मंगलमय होने की प्रार्थना करता हूं और आज के विषय का आरंभ करता हूं। आज हम षटकर्मों का एक जो श्रेष्ठ प्रकार है, कपालभाति, कई लोग उसे प्राणायाम भी कहते हैं और कई लोग उसको षटकर्मों का एक प्रकार भी कहते हैं, उसका अभ्यास कर लेंगे। कपाल माना कपाल और भांति माना चमकना। तो जो कपाल को चमकाने की क्रिया है, जो चेहरे को वंदित करने की क्रिया है, जो चेहरे को चमकाने की क्रिया है, जो नए बालों को लाने की क्रिया है, वो है कपालभाति। चेहरा तभी चमकेगा जब पेट ठीक होगा, जब आपका उदर ठीक होगा, आपका पाचन ठीक होगा, आपके शरीर में टॉक्सिक पदार्थ सारे निकले हुए होंगे, तब ही आपका चेहरा चमकेगा। क्योंकि चेहरा भी एक आईना है, भीतर का दर्पण है। भीतर आप जैसे हो, जैसे समझो पाचन कमजोर है, पाचन वीक है आपका, आपके अंदर आयन कम बन रहा है, उसका अवशोषण कम हो रहा है, तो आपको डार्क सर्कल डेवलप होंगे, आपको चेहरे पर चमक तो आएगी ही नहीं, लेकिन बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे नुकसानों में आप डूब सकते हो। तो कपालभाति एक ऐसी विधि है, सारे टॉक्सिक पदार्थों को वो बाहर फेंकता है, नेगेटिव एनर्जी को वो बाहर फेंकता है और इसी से वजन भी कम हो जाता है, इसी से पेट की ऊर्जा सम्यक हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, दिव्य हो जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, इसी से मूलाधार की सारी शक्तियां ऊपर उठना शुरू हो जाती है, इसी से ब्रह्मचर्य का जन्म होता है, माना इससे ब्रह्मचर्य बढ़ता है, इससे वीर्य की जो अधोगामी है वो रुक जाती है, वीर्य ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाता है और व्यक्ति के दिव्यकरण का आरंभ हो जाता है। अगर आप अनुलोम विलोम भी करते हैं, उद्गीत भी करते हैं और कपालभाति भी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ऊर्ध्वीकरण होना तय है। और जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य भी देव बन सकता है, वो क्रिया संभव हो जाती है अगर आपने राजयोग भी सीख लिया इसके साथ। इसके लिए आप राजयोग सीखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राजयोग एक ऐसी कला है जो व्यक्ति को देह से पृथक होने की कला सिखाती है। मैं देही हूं, मैं देह नहीं हूं, इसकी साक्षात अनुभूति कराने की जो कला है वही राजयोग है। और इसका एकाधिकार मैंने अध्ययन किया है केवल ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है। अगर आपने विधिसर राजयोग सीख लिया और विधिसर फिर कपालभाति की, तो निश्चित रूप से आपके शरीर के सारे नेगेटिव आयामों का पिघलना तय है, आप सीधा बैठ जाएंगे। याद रहे ये खाली पेट ही हो सके तो ये सुबह ही करें, ये शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए बहुत सिंपल है, आप सच करते हो या गलत करते हो ये भी कईयों को कपालभाति में मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि पेट की और नासिका की गति एक समान दिखती है, अगर आप गलत भी करते हो तो भी समान दिखती है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करें और सुने। आप ये हाथ, ये मुष्टिका नाक के पास ले ले, कम से कम 2 या 3 इंच दूर रखें, और आप भीतर से सांसों को फेंके, नाक से सांसों को फेंके, सांसों को फेंकेंगे आप तो पेट निश्चित रूप से अंदर जाएगा। कई लोग पहले पेट को खींचते हैं और बाद में सांसों को फेंकते हैं, सिंपल यही गलती है। आप पहले सांसों को फेंके तो अपने आप पेट अंदर जाएगा। सच या गलत में केवल इतना ही अंदर है, अंतर है पानी पर जैसे लकीर करते हैं। आप सीधा बैठ लेंगे, ये हाथ ऐसा रखेंगे और मेरे साथ शुरू कर देंगे। ये जब स्ट्रोक लगाते हो तब आपका पूरा नाभि अंदर के ओर खींचेगा, पूरा पेट अंदर की ओर खींचेगा, फिर वापस आएगा। ये अकेला प्राणायाम ऐसा है जिसमें आपने कभी सांस नहीं लेनी है, अपने आप सांस आ जाएगी, कभी सांस लेनी नहीं है। अगर सांस लेके फेंका तो वो तो भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, और प्राणायाम में कपालभाति में कैसा है, ये कपालभाति है। बहुत सुस्पष्ट रूप से आप सीखेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक छोटा सा और उदाहरण देके समझाता हूं। आपने कभी भौंकते हुए कुत्ते को देखा होगा, जब कुत्ता भौंकता है तो उसके पेट के दोनों पार्ट भीतर में आते हैं। आप उसके भौंकने की थोड़ी एक्शन करें, सीधा बैठते हुए भौंक भौंक एक जर्क यहां ही लगेगा आपको, नाभि पर जर्क लगेगा, करके देखो अभी नाभि पर जर्क आया, यस के नो, नाभि पर जर्क आएगा। अब ये भू की जो विधि है वो मुंह बंद करके नाक से करेंगे, इसमें आवाज नहीं करनी है, नहीं तो कई लोग ये आवाज नहीं करनी है, साइलेंसर लगा लो, सीधा बैठ लेंगे और बिल्कुल आसान है। आप भी इसे बड़े प्यार से करें, सारे नकारात्मक आप भी इसे बड़े प्यार से करें, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएंगी, वजन कम होगा, एक स्ट्रोक में 1 ग्राम वजन निकलता है, 1 ग्राम भाप निकलती है। जिनके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है ना, उनको तो अवश्य करना चाहिए ताकि भाप बन के पानी उड़ जाए। 1000 स्ट्रोक लगाओगे तो 1 किलो वजन कम हो सकता है, ऐसा पूज्य बाद रामदेव जी महाराज ने कहा था। और इसको ज्यादा करेंगे पित्त प्रकृति वाले तो इनका पित्त बढ़ सकता है, फोड़े फुंसियां भी हो सकती है, बाल भी झड़ सकते हैं। इसलिए अति सर्वत्र पर जय थे, आप 60-60 के 2 या 3 आयामों के में करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे, गलत तो नहीं हो रहा है इसका भी ध्यान रखेंगे, खाली पेट करेंगे, बस बहुत प्यार से कीजिए, भगवान के पास बैठ के कीजिए, प्रकृति के विराट गोद में बैठ के कीजिए, बहुत अच्छे अनुभव होंगे आपको। अस्तु, इस संवाद का पूरा श्रेय मैं भगवान श्री के चरणों में अर्पित करता हूँ और आज के संवाद के समापन की आज्ञा चाहता हूँ। मेरी भारत माता को प्रणाम। अस्तु, वंदे मातरम।
दोस्तों, हम अभी अभी प्राणायाम सीख कर आए हैं और हरीश वैद्य जी ने बहुत ही अच्छे से हमें प्राणायाम सिखाया। अब कार्यक्रम के अगले हिस्से पे चलते हैं और आज लेते हैं आज का बोध। और आज का बोध देने के लिए हमारे साथ मुंबई से राजयोगिनी क्रीना दीदी जी जुड़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास और आज के विषय पर उनसे बोध हासिल करते हैं और बातचीत करते हैं। स्वागत है दीदी आपका।
नमस्कार, धन्यवाद। सबको बहुत प्यार से परमात्मा की याद में ओम शांति।
दीदी, जब हम 21 दिवसीय योगा चैलेंज लेकर चल रहे थे तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हम क्या क्या सीखेंगे। तो पतंजलि अपने अष्टांग योग में अलग अलग अंगों की बात करते हैं और लोग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब चीजों को समझ कर आए हैं। तो आज एक नए विषय पर हम आपके पास आए हैं, तो आज के विषय के बारे में अगले 10-15 मिनट के लिए हमारे साथियों को बोध दीजिएगा।
जरूर, बोध तो नहीं कहेंगे लेकिन अपने अनुभवों की लेन देन अपने समाज में युगों से अपने आदरणीय ऋषि मुनियों ने अपने प्रयोगों द्वारा अपने अनुभवों को हमारे सामने प्रस्तुत किया और इतनी मनकमाल की बात है सारी बातें बिल्कुल करंट में एकदम अपने दिनचर्या में डे टू डे लाइफ में जैसे अपने लिए ही बनी हो ऐसा महसूस होता है। इसीलिए आपने जो देखा यम के बारे में, नियम के बारे में, ये बिगिनिंग में ही होना कितना जरूरी है ये भी आपने समझा होगा। डायरेक्ट हम कोई चीज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम तैरना सीखना चाहते हैं, हम सोचते हैं पहले दिन ही हमें अंदर डुबाएंगे, हमें तैरना सिखाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सब में सीख जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहला हफ्ता तो आपको सारी बातें समझाई जाती है, क्या ध्यान रखना है, क्या आपको नहीं करना है, पानी को कैसे समझना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पानी में ले जाया जाता है। ऐसे ही राजयोग के अभ्यास में भी भले वो पतंजलि द्वारा निर्मित हो या परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ राजयोग हो, लेकिन सबसे पहले यम और नियम ये दोनों बहुत आवश्यक है। पर यही पर कईयों की ब्रेक लग जाती है कि हम ये सब तो नहीं कर सकते, सीधा सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन वैसे हो नहीं पाता है। जब आप करने लगेंगे तो जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे फॉलो करने से आगे के जो स्टेप्स है, आगे का जो अभ्यास है, वो और सहज होता जाता है। इसीलिए वो मुश्किल मत देखो, मना उसको मुश्किल के रूप में मत देखो, उसे आकार करो, उसका स्वीकार करो, उतना जीवन आपके लिए सहज हो जाएगा। फिर आगे दिखाया कि आप आसन भी करो, क्योंकि योग में जब बैठते हैं तो आसन में ही बैठा हुआ कहेंगे, माना भले आपने कोई दूसरे विशेष आसन नहीं भी किए हो, लेकिन जब हम एक पैर से दूसरे पैर को जोड़कर ऐसे नीचे बैठ जाते हैं तो उसे भी तो सुखासन कहते हैं। माना आसन माना एक प्रकार का पोस्चर जो आप उस समय 10-15 मिनट के लिए भी आप उसी पोस्चर में उसी आसन में आप बैठो तो वो भी आपको मदद करता है। क्योंकि बिगिनिंग में ही श्रीनिधि जी ने कहा कि चित्त वृत्तियों का निषेध, माना जो हमारा मन इतना भटकता है, वृत्तियां हमें कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देती है, उनको जीतने के लिए कुछ डिसिप्लिन्स बहुत जरूरी होते हैं। चौथा जैसे कहा प्राणायाम, तो प्राणायाम में ब्रीदिंग श्वास जो हमारा प्राण है वो भी तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे अभी भी योगी जी ने बताया कि अगर आपका जो मेथड है कपालभाति का उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। जो फायदे आपको चाहिए वो सही श्वासों के आने जाने को समझने से होता है। ऐसे ही प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में फिर हम धीरे धीरे अपनी इंद्रियों की तरफ आते हैं, इंद्रियों को समझने की कोशिश करते हैं। हम तो कछुए को बहुत याद करते हैं इसमें। कछुआ कैसे अपने कर्म करने के लिए अपने सारे अंगों को बाहर लाता है और जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो वो अपने अंगों को अंदर संकीर्ण कर लेता है। माना एक मास्टरी जब वो यूज करना चाहता है तब वो यूज करता है, जब नहीं यूज करना चाहता तो उन्हें बहुत आराम भी देता है। तो ये जो सेल्फ रूलिंग है अपनी इंद्रियों के साथ, इसमें हर एक चीज में हमें बहुत लाभ मिलता है। जैसे भोजन में, माना खाने पीने की बाबत में, सोने उठने की बाबत में, चलने फिरने की बाबत में, हर बात में प्रत्याहार हमें बहुत मदद करता है। और जब तक प्रत्याहार नहीं हुआ, जब तक इंद्रियों को हम नहीं समझेंगे और इंद्रियों को कैसे चैनलाइज करना है वो हम नहीं समझेंगे, तब तक धारणा कैसे होगी। धारणा पतंजलि के अष्टांग योग के हिसाब से धारणा माना कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता एक ही संकल्प पर। ये जैसे हम एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचते हैं उसके पहले हमारा मन हमारी बुद्धि चारों ही दिशाओं में भटक रही होती है, हमारी वृत्तियों की चंचलता चलती है, लेकिन जब हम धारणा की स्टेज पर आते हैं तो हम धीरे धीरे अपने को एक ही संकल्प पर कॉन्सेंट्रेट करना सीख जाते हैं। वो बहुत जरूरी है। एक ही संकल्प पर जब आप स्थिर हो जाते हैं उस समय आत्मा के अंदर बहुत पावर होती है, जिसको आत्मबल कहा जाता है। चित्त जो है वो शांत होने लगता है, जो हमारी कर्मेंद्रियां है वो भी स्थिर होने लगती है। कॉन्सेंट्रेशन कई लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पे बाहरी चीजों पर ज्यादा करने के अभ्यासी होते हैं, जैसे कोई मूर्ति पर करते हैं, कोई चित्र पर करते हैं, कोई ओम पे करते हैं, कोई कैंडल पे करता है, कोई दिए पर करता है, कोई कैसे। जापानीज लोग स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं सामने केवल वॉल पे, भीत पे, दीवार पे एक डॉट लगाते हैं और उनको बोलते हैं 15 मिनट केवल उस डॉट को देखते रहो। माना एक फिजिकल लेवल पे भी कॉन्सेंट्रेशन की बहुत एक्सरसाइजेस होती है। और दूसरा है कि मुझ आत्मा के अंदर जो एक संकल्प है, मुझे उसी पर फोकस करना है। टू मेनी थॉट से धीरे 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 आई कम टू ओनली वन थॉट। आपको लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर यथार्थ विधि से आप चलेंगे तो उस विधि से एकदम थोड़े समय में ही आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, कोई भी ज्ञान के एक संकल्प पर आप अपने को केंद्रित अनुभव कर सकेंगे। वो पल बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप उस पल पर, उस स्थिति पर पहुंचते हैं, उसके बाद आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आप समाधि की ओर जाना शुरू हो जाते हैं, आप परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन है एक संकल्प पर, वो तभी होता है जब हम उस संकल्प को रियलाइज करते हैं, उस संकल्प की अनुभूति में आ जाते हैं, जिसके लिए फिर अनेक विचारों की जरूरत नहीं है। जैसे आपको सामने एक दृश्य दिखता है और आप वो दृश्य देखने में खो जाते हैं, ऐसे आप उस एक संकल्प में खो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। तो ऐसे ध्यान करना, यही तो एक मनुष्य आत्मा की सिद्धि है। सारे दिन में उसे कितने कर्म करने पड़ते हैं, कितने लोगों को मिलना पड़ता है, कितने प्रकार के विचार करने पड़ते हैं, कितने कार्य अर्थ संकल्प करने पड़ते हैं, लेकिन जब वो एक धारणा में, एक ऐसी स्थिति में बैठे, तब वो आसानी से अपने सारे संकल्पों को समेट कर केवल एक संकल्प पर अपने को एकाग्र करते। इस स्थिति के लिए, इसीलिए उसे पांचवा स्टेप या सिक्स्थ स्टेप माना गया है, कि थोड़ा सा पहले आप नियम यम ये सब थोड़ा ध्यान अपने जीवन में लाए तो आप धारणा पेपर भी आ जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा? जब आप एक ही संकल्प पर अपने को स्थित करेंगे तो जो अच्छे अच्छे गुण है, जो शक्तियां हैं, जो अच्छी प्रैक्टिस की बातें हैं, उन्हें जीवन में अप्लाई करना आपके लिए सहज हो जाएगा। करना है ना आपको, कई लोग कहते हैं गुस्सा बहुत आता है दीदी, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन आ ही जाता है, क्योंकि इस विधि से नहीं गए। जब तक आपकी अभ्यास नहीं करोगे कि मैं एक संकल्प पे आके स्थित हो जाऊं, लेट मी होल्ड दैट वन थॉट फॉर फ्यू सेकंड्स और मिनट्स, इस अभ्यास से आपके अंदर की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है। कोई भी चीज को, भले वैसे जैसे हम कहते ना कि प्रतिकारक परिस्थितियों में भी आप उस गुण को प्रैक्टिस कर सकेंगे, आप उस शक्ति को कार्य में ला सकेंगे, लेकिन जब तक आप वो नहीं लाए, आप रियल अर्थ में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? तो सभी चाहते हैं कि हम सफल बने। सामने वाला बहुत क्रोध कर रहा है, अपने अंदर उस समय आता है कि मैं उसको जवाब दे दूं, मैं भी उसको सुना दूं, लेकिन बाद में सोचते पता नहीं ऐसे ही फालतू में मैंने बोल दिया उसको, वो भले बोले ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नाउ आई एम सो मच एट अनरेस्ट। बाद में रियलाइज होता है। तो ये प्रैक्टिस करने से, कंसंट्रेशन का अभ्यास करने से, आपको बाद में नहीं, कार्य करने से पहले ही डेफिनेटली रियलाइज होगा, आपकी शक्तियां बचेंगी, आपकी आत्मबल आपका सही कार्य में काम आएगा और आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। भले आप दिन में एक बार प्रैक्टिस कर सके, लेकिन उस बात की भी आपको बहुत खुशी होगी, मैं ऐसा समझती हूँ। तो ये तो बहुत ही डिटेल की बातें हैं, समय के अनुसार आज इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आज आपने हमें धारणा के विषय पर बहुत सारी चीजें समझाई। लोग जीवन में धारणा जब भी करना चाहते हैं तो अक्सर उनके पास चैलेंजेस होते हैं। लोग समझते हैं कि जब हम कुछ भी नया करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि भाई इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। जैसे धारणाओं की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग सत्य की धारणा करते हैं कि हम सच ही बोलेंगे, और उसकी वजह से बहुत बार दूसरे लोग भी उन्हें टोकते हैं कि भाई ये बात तो ठीक है, सच बोलना चाहिए, बट आज वो जमाना नहीं है, ये भी सुनने को मिलता है। तो दोस्तों, मैं दीदी से कुछ प्रश्न जो आप लोगों ने डाले हैं उन प्रश्नों को दीदी से पूछूंगा, और आप सभी कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों को लिख सकते हैं अभी के अभी, और मैं दीदी से उसका उत्तर भी लूंगा। तो दीदी, एक प्रश्न यही उठता है कि ऐसे समय पर जब हम लोगों से ये सुनते हैं कि नहीं नहीं ये सच्चाई का जमाना नहीं है, तुम सत्य धारण करके क्या करोगे, तो क्या ऐसे समय पर करना चाहिए ताकि ये चीजें जो हम सुनते हैं इसके बावजूद भी हम अपनी धारणाओं पर अड़िग रहें, इसके लिए क्या किया जाए?
सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, ये जो अपने मन में पूर्व धारणा बैठी हुई है ना, ये निकालना चाहिए। क्यों? ये हमें कमजोर बनाती है। पहले अपने अंदर बल चाहिए। दुनिया तो कुछ भी कहेगी, पर मेरी एक जीवन की एक यात्रा है और मेरी एक मंजिल भी है। मुझे वो मंजिल पर पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। उस यात्रा पर जाते जाते कईयों को मेरे से लाभ भी होगा, कईयों को शायद नहीं भी होगा, लेकिन मैं अगर सबके बोलने के कारण अपनी राह ही छोड़ दूं, क्या ये सही होगा? क्या हम इसके लिए आए हैं दुनिया में? नहीं ना। तो जो लीडर्स होते हैं ना, नेतृत्व वाले होते हैं, वो हमेशा अपनी मंजिल को सामने रखते हैं और अपनी यात्रा को भरपूर जीते हैं। उनमें देने की भावना इतनी होती है ना कि लोग क्या कहेंगे वो तो उनके लिए कुछ महत्व रखता ही नहीं है। हाँ, लोगों को फायदा देना, लाभ देना, वो सदा उनका लक्ष्य रहेगा। इसे मैं समझती हूँ कि ज्यादा कमजोर संकल्प कोई भी बात में करने से, अच्छे से अच्छी बात भी करने से रुक जाती है भाई साहब।
बिल्कुल, यानी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में न सोचकर हम जीवन में कुछ धारण कर रहे हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स को हम अपने लिए अपना रहे हैं, इस चीज को जितनी बारीकी से हम समझें उतना अच्छा है,
उतना दूसरों को भी लाभ होगा।
जी, दूसरों को भी लाभ होगा, बिल्कुल।
दोस्तों, सेल्फिश।
जी जी, दूसरी धारणा की जब बात आती है तो अक्सर जब हम किसी चीज को धारण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये बहुत कट्टर होते जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई चीज को अपनी धारणा बना रखी है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे धारणा से तो दूसरों को दुख मिलता है, तुम इतने कट्टर क्यों हो रहे हो? हालांकि वो अच्छी चीज धारण करते हैं, कोई शाकाहार धारण करते हैं, कोई शराब इत्यादि का सेवन नहीं करते। कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करने की धारणा करते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों को सोचने की धारणा लेते हैं, बट इससे ये चीज बहुत बार सुनने को मिलती है। ऐसे में धारणा कट्टरता से अलग कैसे है?
बहुत फर्क है। किसी को भी कट्टरता पसंद नहीं आती है, किसी को भी नहीं, खुद को भी नहीं। क्यों? जहां कट्टरता है ना, वहां बैलेंस नहीं है
जी,
संतुलन नहीं है। अब संतुलन किस बात का? आपने जो अपने लिए धारणा ली है उसका प्रभाव दूसरों पर आपके व्यवहार से जाता है, न कि आपकी की हुई धारणा से। धारणा कई बार वो दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन उससे भी पहले अपना व्यवहार, आ वे ऑफ थिंकिंग, वो पहले उनको पहुंच जाता है। और जब वो पहुंचता है ना, दे गेट हर्ट। तो मैं समझती हूं बाबा, माना परमात्मा हमेशा कहते हैं कि विथ ट्रुथ देर शुड बी स्वीटनेस एंड सॉफ्टनेस। फिर भले ना कितने भी विघ्न आए, पर आपकी मधुरता, आपकी जो जेंटलनेस है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। आप किसी की बात को कट नहीं कर सकते हैं, आप किसी के विरोध को डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये सब एटीट्यूड्स की बात है। अगर आपकी धारणाओं के साथ आपने अपने अटेंशन और बिहेवियर पे ध्यान दिया होगा, मैं समझती हूँ और मेरे जीवन के अनुभवों में मैंने देखा है कि कम से कम ऑपोजिशन होता है, भले वो करे ना करे पर ऑपोजिशन बहुत कम होता है।
जी, हमारे एक और दोस्त ने ये पूछा है कि अक्सर हम ये सुनते आए हैं कि धारयति इति धर्म, यानी जिस चीज को हम धारण करते हैं वही हमारा धर्म होता है, और ये भी चीज हम सुनते हैं कि धरत परिये धर्म न छोड़िए। तो क्या अपनी धारणाओं में फ्लेक्सिबल रहना अनिवार्य है या फिर अडिग रहना जरूरी है? मैं समझता हूं हम दीदी जी से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक उनके कनेक्शन से हम वापस जुड़ते हैं। जो हमारे दोस्तों ने प्रश्न पूछा है उसके ऊपर मैं आपका ध्यान खिंचवा देना चाहता हूं। आप सभी भी प्रश्न लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास अगले 3-4 मिनट हैं जब हम दीदी से प्रश्न पूछें। धारणा के विषय पर आज जो हमने वक्तव्य सुना है उसे सुनने के बाद ये पता चलता है कि जो हम अपने लिए धारणा चुनते हैं, अपने लिए मैं इसे एक अपना पर्सनल प्रिंसिपल समझ के अडॉप्ट करता हूं, क्या उस प्रिंसिपल के प्रति मुझे अडिग रहना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न उठता है, कभी कभार ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार हम अपनी धारणा तोड़ देते हैं या छोड़ देते हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये अक्सर हमारे मन में होता है। तो क्या ऐसे करने से हमारे लिए फायदा है या नुकसान है, इस पर भी चिंतन करना, मनन करना बहुत ही आवश्यक वस्तु होती है। मगर जितने महानुभावों के जीवन को हम देखते हैं, जो महान लोग हुए हैं उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कभी भी अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने धारणाओं के साथ उन्होंने एडजस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने हमेशा लोगों के साथ मिलकर काम किया मगर अपने साथ अपनी जो धारणा थी अपने फायदे के लिए या फिर अपनी डिफिकल्टी को छिपाने के लिए उस धारणा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर विषयों पर हमने चर्चा की है। हमने ये भी समझा है कि पतंजलि जब धारणाओं की बात करते हैं तो वो किस चीज के बारे में बताते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने भी धारणाओं को सही तरीके से समझा होगा। दीदी हमारे साथ वापस लौटे हैं तो मैं दीदी से उसी प्रश्न को वापस ले आता हूँ। हमारे
जी, मैंने आपका प्रश्न
दीदी जी तो वो कहते हैं कि क्या धारणाओं पे हमें अडिग रहना चाहिए या कि अपनी धारणाओं के साथ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रश्न है।
वेरी शॉर्ट, धारणा के साथ अब भले कोई भी धारणा करते हो, यहाँ पर हम धारणा माना एप्लीकेशन के रूप में समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक धारणा है कॉन्सेंट्रेशन और एक धारणा है एप्लीकेशन। तो जो हम एप्लीकेशन में करना चाहते हैं उसमें अडिग रहना जरूरी है, नॉट बी फ्लेक्सिबल। आप फ्लेक्सिबल नहीं रह सकते, अडिग रहना है, लेकिन मैंने आपको बोला ना बैलेंस में आप अपनी वृत्तियां, अपने एटीट्यूड्स, अपने बिहेवियर को ऐसा रॉयल बनाओ जो आपको समझे लोग, आपकी अच्छाई को देख सके, और आप अपना एक ऐसे स्वरूप बनाओ कि जिसे लोगों को वो डिफिकल्ट ना लगे, वो चैलेंजिंग ना लगे, उनको आपसे ऐसा लगे अरे ये तो कितनी अच्छी बात है और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना मैं समझ रहा था, ऐसा होना चाहिए। पर अडिग रहना बहुत जरूरी है।
जी, एक और दोस्त है मधुरिमा शर्मा, हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं कि व्हाई आर गुड पीपल मेड फन ऑफ एंड इग्नोर्ड ऑफ देयर एडवाइस। जैसे अच्छे लोग का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है और बहुत बार उनके दिए हुए एडवाइस को आसानी से इग्नोर कर दिया जाता है, ये तो ऐसे ही है, इनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा भी समझा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जी, अच्छे लोग कितने होते हैं? अगर ऐसा प्रश्न पूछा गया है दैट मीन्स ये बुरे लोग भी है और अच्छे लोग भी है, ये एक देखने का नजरिया भी हो सकता है। एक होता है कि हम जब भी जीवन में आगे जाते हैं तो हमारी कुछ बातें लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सो इट इज बेटर नॉट टू बी सो बॉदर्ड। अगर कोई ने मजाक भी कर लिया या आपके एडवाइस को इग्नोर भी कर दिया, इट डजंट एंड योर लाइफ, इट डजंट एंड योर जर्नी। जस्ट बी अवेयर, अपने आपके प्रिंसिपल्स की अवेयरनेस में जियो, उसको खुद पहले एंजॉय करो और आगे बढ़ो। आपको मानने वाले लोग भी आपको मिल जाएंगे। आप क्या सबको खुश करना चाहते हैं? नॉट पॉसिबल।
जी, बहुत ही खूबसूरत चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ समय को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न मैं ले लेना चाहता हूँ। नित्या हमारे साथ YouTube पे कार्यक्रम देख रहे हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, हर स्थिति में अडिग कैसे रहें? ये प्रश्न है इनका।
मेडिटेशन, माना अपने अंदर गहराई तक शांति में जाना, जहां फिर आपको कोई संकल्प भी ना रहे, ऐसे स्वीट साइलेंस को अपने अंदर टच करना और जो परमात्मा, जो ही इज लाइक अ पिलर, ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रांग, इनके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखना, द सोर्स इनके साथ बनाए रखना और अपने अंदर जाने का रोज अभ्यास करना, क्योंकि एक स्पेस है आपके अंदर जहां कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तो हमेशा बाहर रहने से अच्छा है एटलीस्ट एक बार तो अपने अंदर जाओ, उस स्पेस के अनुभव में जाओ। अरे यहां तो कोई नहीं है मेरे सिवाय, कमाल है। तो वेर आर देयर एनी डिस्ट्रैक्शंस और एनी यू नो अगेंस्ट एंड नोबडी इज अगेंस्ट, आई एम देयर बाय माय सेल्फ। जब जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे रोज, धीरे धीरे आपकी जो आंतरिक स्थिति है वो मजबूत होती जाएंगी, उसमें पावर आता जाएगा कि आपको बाहर की सिचुएशंस भी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन रोज का अभ्यास नित्या वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू रिकग्नाइज दैट इंपॉर्टेंस? तो आप जरूर अपनी स्थिति बना सकेंगे।
वाह, कितनी खूबसूरत बात आपने कही दीदी, और इससे ये समझ में आता है कि हमें ये प्रयास करने की जरूरत है हमारे कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने के लिए। उस पिलर ऑफ सपोर्ट, उस सोर्स से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं समझता हूँ दीदी जी से हम और भी प्रश्न लेना चाहते हैं मगर वक्त इतनी ही इजाजत देता है। दीदी, आप खास हमारे साथ योगा डे के इस विशेष ओकेजन पर धारणा इस विषय पर आपने हमें ज्ञान दिया, हम सबको अपने बहुत ही ईमानदारी से और बड़े ही सहजता से ये कह दिया कि आप शेयर ही करेंगे अपने लाइफ की लर्निंग्स, बट ये सभी के लिए बहुत प्रेशियस लर्निंग्स रहे हैं। आप जुड़े और ये चीजें शेयर की हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार।
आप सबका भी
दोस्तों, अब बिना देर किए हुए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में आते हैं जहां पर हम सभी लोग मिलकर करेंगे राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन जैसे कि दीदी ने कहा कि परमात्मा से उस संबंध को अगर हम जोड़ते हैं तो वो हम सब के लिए बेनिफिशियल रहता है, हम सब के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहता है। तो हमें उस स्ट्रेंथ को वापस कनेक्ट करने का वक्त आ रहा है। चलिए अगले 5 मिनट के लिए हम करते हैं राजयोग ध्यान यानी कि मेडिटेशन।
शांति। संपूर्ण योग के आज के इस नुमा शाम में आइए हम सभी संतुलित योगी जीवन का अनुभव करें। थोड़े समय के लिए हम सभी अपने मन को एकाग्र कर अन्य सभी बातों से हटाकर अपने ही असली स्वरूप में स्थित करेंगे और खुद से बातें करेंगे। स्वयं को इस श्रेष्ठ संकल्प में स्थित करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। दोनों भ्रू लताओं के मध्य विराजमान मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति को अनुभव करते हुए मैं अपने आप से बातें कर रही हूं। मैं अनुभव कर रही हूं मेरी मन बुद्धि और संस्कार मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। मेरा मन सदा ही शुद्ध संकल्पों में रमण करता रहता है। मेरी बुद्धि सही समय पर सदा सही निर्णय लेती है। और मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्म के आधार से श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करती हूँ। संतुलन ही मेरे जीवन का आधार है। मैं अपने संतुलित विचार संतुलित आहार एवं संतुलित व्यवहार के आधार से अपने जीवन को सदा स्वस्थ और सुखी बनाती हूँ। मेरी सर्व कर्मेंद्रियां सदा ही मेरे नियंत्रण में रहती हैं। मैं अपने सद्विचार और सद्विवेक के आधार से सदा वही करती जो सही है। मैं अपने संकल्प वाणी और कर्म से अन्य सभी आत्माओं को भी संतुलित योगी जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हूं। मेरे जीवन से प्रेरित होकर अन्य सभी आत्माएं भी संतुलित योगी जीवन जीने का संकल्प कर रही। सभी आत्माओं के सहयोग से संतुलित योगी जीवन से इस संसार में एक सुखमय संसार की स्थापना हो रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपा दीदी आपका कि आज आप सीधे लाइव हमसे जुड़े और हमें मेडिटेशन की ये सुंदर अनुभूति कराई। दोस्तों, मेडिटेशन एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हम सब के लिए होता है अगर हम उसके बेनिफिट्स को समझकर उसे हर दिन बिना मिस किए हुए करें, यानी उसके अभ्यास को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, मेडिटेशन को अपने लाइफ स्टाइल का एक अंग बना लें, तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको भी मेडिटेशन पसंद आया होगा और ये मेडिटेशन हम सब के लिए आसान है। हम जहां हैं वहां बैठ के हम इन चीजों को कर सकते हैं। हम अलग अलग परिवेश में बैठते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, हम सबके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं। वहां रहते हुए भी हम परमात्मा से कनेक्ट कर पाए, हम सब ईश्वर से जहां बैठे हैं वहां से जुड़ सकें, ये सब हम सबके लिए पॉसिबल है। आज एक छोटी सी कोशिश रही थी कि हम भी कुछ नया करें। हर दिन आप हम सबको कहीं अंदर कमरे में बैठ के देखते हैं। आज हमने सोचा कि ब्रह्मा कुमारी इसके मुख्यालय में, जहां से आप में से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हो या कभी नहीं ट्रैवल कर पाए हो या आज रिस्ट्रिक्शंस के कारण नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, तो भी हम कनेक्ट कर पाए इन सुंदर वातावरणों को आपको दिखाकर, आप वापस उन स्मृतियों में खो सकें, फिर से वो कनेक्शन महसूस कर सकें, ये प्रयास किया गया। और मेडिटेशन इन्हीं प्रयासों का ही तो नाम है कि हम कनेक्ट कर सकें। योग शब्द ही उस कनेक्ट को, उस यूनियन को, उस कनेक्शन को दर्शाता है। भले हम कहीं पर भी हों, मगर अपने स्मृति से, अपने मन से, मेडिटेशन से हम वहां पर पहुंच सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि योग के ऊपर ये जो हमारा 21 दिवसीय योग चैलेंज है, आप सबको पसंद आ रहा होगा। आप अपने दोस्तों को कल और परसों आखिरी दो दिनों में ले आना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी इस 21 दिवसीय योगा चैलेंज में, जिसका नाम है संपूर्ण योग। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से एक खास पेशकश आप सबके लिए थी। अरावली की पहाड़ियों से आप सबके लिए यही मंगल कामनाएं हैं कि आपका दिन शुभ रहे और आप स्वस्थ रहें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।